नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही में 13.2% बढ़कर 541 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बैंक को इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की समान तिमाही में 478 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। फेडरल बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 3,948.24 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान 3,843.87 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 18.8% बढ़कर 1,889.82 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में ये 1,590.30 करोड़ रुपए था। पूर्व वित्त वर्ष में बैंक की कुल आय बढ़कर 15,739.85 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले 2020-21 में 15,716.61 करोड़ रुपए थी। बैंक की सकल एनपीए यानी फंसा कर्ज 31 मार्च 2022 को घटकर सकल अग्रिम का 2.80% पर पहुंच गया, जबकि एक साल पहले ये 3.41% था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत अगले साल तक यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकता है। उद्योग मंडल IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि देश संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे समझौते कर चुका है तथा अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी सहयोग परिषद समेत कई देशों के साथ ऐसे समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। मीडिया समूह ABP ग्रुप ने गोवा में आयोजित कार्यक्रम गोवा फेस्ट 2022 के दौरान अपने शताब्दी लोगो का अनावरण किया। विज्ञापन एजेंसियों के संगठन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और द एडवर्टाइजिंग क्लब की ओर से बृहस्पतिवार को गोवा फेस्ट 2022 का आयोजन करवाया गया था। कंपनी ने एक बयान में कहा, शताब्दी अभियान के लोगों के पीछे अवधारणा है, जिज्ञासा सब कुछ दिलचस्प बनाती है। ABP प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दुबरा मुखर्जी ने कहा कि ABP समूह के शताब्दी लोगों में प्रश्न चिन्ह दर्शाया गया है, जिसके पीछे यह सोच है कि जिज्ञासा जीवन में हर चीज को रोचक बनाती है। टाटा मोटर्स ने SBI के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट को अतिरिक्त निदेशक के पद पर पुनः नियुक्ति दी है। उनका कार्यकाल 7 मार्च 2026 तक होगा। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अनुशंसा के आधार पर भट्ट को अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक का दूसरा कार्यकाल देने की मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 9 मई 2022 से शुरू होगा। कंपनी ने कहा कि आगामी सालाना आम सभा में इस नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले भट्ट को 9 मई 2017 से 8 मई 2022 तक 5 साल के कार्यकाल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बनाया गया था। भट्ट भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रह चुके हैं। स्वास्थ्य जांच सेवा देने वाली कंपनी रेडक्लिफ लाइफटेक ने शुक्रवार को कहा कि उसने लीप फ्रॉग इन्वेस्टमेंट के नेतृत्व में आयोजित वित्त पोषण दौर में 6.1 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इस वित्त पोषण दौर में हेल्थ क्वाड, श्रॉडर्स, एलसीवीनियोवा, ग्रोथ स्पार्क वेंचर्स और वर्तमान निवेशक चिराटे वेंचर्स तथा अल्केमी वेंचर्स पार्टनर भी शामिल हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस निवेश का उपयोग देश भर में कंपनी की पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा और द्वितीय, तृतीय तथा चौथी श्रेणी के लोगों तक किफायती और गुणवत्ता परक निदान सेवा पहुँचाई जाएगी। रेडक्लिफ की देश के 14 शहरों में 22 प्रयोगशालाएं हैं। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स ने अपने IPO के लिए मूल्य दायरा 310-326 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का 165 करोड़ रुपए का IPO 11 मई को खुलेगा। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि IPO 11 मई को खुलकर 13 मई को बंद होगा और एंकर निवेशकों के लिए बोली 10 मई को खुलेगी। उसे बताया कि IPO के तहत कंपनी के 50.74 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। इससे 165.41 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद है। निर्गम से होने वाली आय का उपयोग क्षमता विस्तार, कार्यशील पूंजी जरूरतों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कंपनी के वीनस ब्रांड के उत्पादों की आपूर्ति रसायन, इंजीनियरिंग, उर्वरक, दवा, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, कागज और तेल एवं गैस जैसी विविध क्षेत्रों में की जाती है। कंपनी स्टेनलेस स्टील के पाइप और ट्यूब की विनिर्माता एवं निर्यातक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने मार्च 2022 में समाप्त हुई तिमाही में दोगुना से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 65% की बढ़त के साथ 1,666.22 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक ने इससे पहले के वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,010.87 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कैनरा बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में कहा कि साल 2021-22 की जनवरी मार्च तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 22,323.11 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो 2020-21 की समान अवधि में 21,040.63 करोड़ रुपए थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर बैंक की सकल एनपीए या फंसे कर्ज मार्च 2022 के अंत में घटकर सकल अग्रिम का 7.51% रह गए, जबकि मार्च 2021 के अंत में ये 8.93% रहा था। मूल्य के हिसाब से सकल एनपीए 60,287.84 करोड़ रुपए घटकर 55,665.58 करोड़ रुपए रह गया। समीक्षाधीन तिमाही में शुद्ध एनपीए भी घटकर 2.65% रह गया, जो 3.82% था। बैंक का बीते पूरे वित्त वर्ष के लिए एकल शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक 5,678.42 करोड़ रुपए रहा, जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में ये 2,557.58 करोड़ रुपए था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।